اس زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، جیسے پرانے زمانوں میں قبائلی علاقے سے ہوتا تھا۔ اس طرح کی بہت سی فساد انگیزیوں کا ذکر ہم یورپ کے قبائلی علاقوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے آسٹریلیا کے قبائلی علاقوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، قدیم افریقہ کے قبائلی علاقوں میں پڑھتے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ دوسرے علاقوں کا خود ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں، آتے ہیں، لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور اس درے سے یہ ہو کے آتے ہیں، یعنی ہم چونکہ اس کے بالکل سامنے آباد ہیں، یہی ہمارا علاقہ ہے، یہ لوگ یہاں آتے ہیں اور فساد پھیلا کے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے درخواست یہ کی کہ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے محصول کا بندوبست کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں؟ یعنی آپ ایک بڑے بادشاہ ہیں، آپ کی بڑی سلطنت ہے، آپ کے پاس بڑے فسائل ہیں، بڑے لشکر ہیں۔ اس زمانے میں جب بادشاہ مہمات پر جاتے تھے تو صرف فوجیں ہی ساتھ نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ہر طرح کا کام کرنے والے ہنر مند بھی ساتھ ہوتے تھے، اور اسی اہتمام سے بالعموم یہ مہمات تر کی جاتی تھیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک باجبروت بادشاہ ہے، اس کے پاس بہت سے وسائل ہیں، تو یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے محصول کا بندوبست کر دیتے ہیں، یعنی ہم پر کوئی آپ ٹیکس لگا دیجئے، وہ ہم ادا کر دیں گے، اس کے صلے میں آپ ہمیں ان فساد کرنے والوں سے نجات دلا دیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ لوگ اپنے ہی علاقے میں محدود تھے، ان کے ساتھ بات کرنا اتنا آسان نہیں تھا، تاہم کچھ راستہ نکالا گیا۔ اب یہاں انہوں نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کر دیا، یعنی باقاعدہ نام لے کے انہوں نے بتایا کہ وہ کون سے قبائل ہیں جو ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں یا یہاں فساد برپا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں، یعنی یاجوج اور ماجوج، یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے پاس جو قدیم ترین تاریخیں ہیں وہ دنیا کا شجرہ نسب یہی بیان کرتی ہیں کہ جب نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے اترے تو ان کے تین بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور کچھ اور لوگ بھی دنیا میں پھر انہی کی اولاد مختلف علاقوں میں پھیلی۔ ان میں سام تھے، حام تھے اور یافس تھے۔ یافس کی اولاد کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان علاقوں میں چلے گئے، یعنی جس کو ہم اب وسط ایشیا کے علاقے کہتے ہیں۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی، اوپر کا حصہ جہاں یہ روس ہے، چین ہے، منگولیا ہے، ان ممالک میں یہ آ کے آباد ہوئے۔ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور تبالسک کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے، یعنی جس زمانے میں حزقیل کا صحیفہ لکھا گیا اس وقت ان کی وہاں حکومتیں یا بادشاہتیں قائم تھیں، گویا یہ ان قوموں کا علاقہ بن چکا تھا اور انہی کے نام سے اس کا تعارف بھی ہوتا تھا۔ اس سے واضح ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل بھی یہاں محکوم تھے۔ یہی بادشاہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو دوسری مرتبہ یروشلم میں آباد کیا، ان کو بہت کچھ مدد فراہم کی، اور محکومی کے بجائے انہیں ایک ایسی قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جو کم سے کم اپنے علاقوں میں خود مختاری کے ساتھ رہ سکے۔ یہی زمانہ ہے جس میں تورات دوبارہ ترتیب دی گئی، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے جو حملہ ہوا تھا اور جس میں یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اس میں ورق ورق کر دی گئی، ان کا معبد بھی ختم کر دیا گیا، پوری قوم محکوم بنا لی گئی تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ان کی اپنی تاریخ میں بہت وضاحت سے بیان بھی ہوا ہے۔ तो ये याफिस की औलाद में से थे, और याफिस की औलाद एशिया के शिमाली इलाकों में आबाद हुई। जिस तरह साम की औलाद ज़्यादातर मशरक़ वुस्ता में आबाद हुई अरब इलाकों में, और इसी तरीके से हाम की औलाद का इलाका ज़्यादातर अफ्रीका रहा। बाकी इलाकों में भी यही कौमें फिर हिजरत करती रही हैं, फिर इनमें इख्तलात भी होता रहा है, वो बाद के मसाइल हैं। सहीफ़ा हिजकील में जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, इनका तारुफ कराया गया है। हिजकील फरमाते हैं, ये हिजकील के 38वें बाब की बिल्कुल इब्तदा है, पहली दूसरी आयत है। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है, और रूस मिस्क, ये मास्को है वही, बाद में इसका तलफ़ुज़ ये हो गया, और तौबल तुबालसक का फरमा रवा, अब है मतवज्जे हो और उसके ख़िलाफ़ नबूवत कर। यानी वो इलाका है जिसके बारे में इनसे कहा गया कि अब इन लोगों तक भी खुदा का पैगाम पहुंचना चाहिए, तुम लोग अब इनके लिए नबूवत करो, तो ये उनको बताया गया। इसी तरह से हिज्कील के 39वें बाब में भी बिल्कुल इब्तदा में फिर इनका ज़िक्र है। उसमें अल्फाज ये हैं कि पस ए आदमजात, तू जूज के ख़िलाफ़ नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देख है जूज, रूस मिस्क और तोबल के फरमा रवा, ये पुराने नाम है वही, यानी रूस मास्को और तोबालसक, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और मैं तुझे फिरा दूँगा और तुझे लिए फिरूँगा और शुमाल के दूर अतराफ से चढ़ा लाऊँगा। यानी अगर तुम इसी सरकशी पर कायम रहते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ ये मामला करूँगा। ये इनको तंबीह करो, मुतनब्बे कर दो, इनको बता दो ताकि ये भी अगर संभलना चाहें तो संभल सकें। ये हिस्कील नबी के इल्हामात हैं, जो इस वक्त भी बाइबल है उसमें नकल हुए हैं, उसी के इक्तिबासात के मैंने पढ़े हैं। तो इन लोगों ने इनके बारे में उनसे कहा कि ये इस वक्त बिल्कुल गारत कर हुए हुए हैं, फसाद बरपा करते हैं, इस दर्रे से निकल के आ जाते हैं और इस तरह हमारे मालो औलाद को, बागात को, दूसरी चीज़ों को, जो कुछ भी हमारे पास सरो सामान है, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये जहन में रहना चाहिए कि ये चूंकि इसी इलाके में आबाद थे और फिर इन्होंने दूर दराज के इलाकों की तरफ हिजरतें की हैं, यानी यूरोप की तरफ भी इनकी हिजरत हुई है और साइबेरिया से पार भी इनकी हिजरतों के आसार तारीख़ पे मिलते हैं, वहाँ से भी हिजरत करके गए हैं। और दुनिया में इस वक्त अमेरिका में जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं, और फिर बाकी और इलाकों में भी इनके जाने का तो जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं, वो सब तो हमारी आंखों के सामने फिर हुआ है और वो तारीख़ के मुसल्लमात हैं। यानी यही अकवाम है, इनमें से जाहिर है कि याफिस की औलाद है, याफिस की औलाद के एक से ज़्यादा बेटों का जिक्र आता है, यानी काफ़ी बड़ी तादाद है, और उन्हीं के नाम पर फिर पुराने शहर भी आबाद हुए हैं, तो जूज माजूज भी उन्हीं में से हैं। मिसाल के तौर पर एक बेटे का नाम याबान है, और इसी तरह के बहुत से नाम आते हैं। वो अगर आप बाइबल में शजरा नसब पढ़ें तो उसमें सब के नाम दिए हुए हैं। तो ये लोग ज़मीन में फसाद बरपा कर रहे थे, इन लोगों ने दरख्वास्त की कि महसूल ले लें और कोई रोक बना दें। काला मा मक्कनी फी है रब्बी, काला मा मक्कन्नी फी है रब्बी खैरुन फाईनूननी बिकुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। उसने जवाब दिया कि जो कुछ मेरे परवरदिगार ने मेरे इख्तियार में दे रखा है वही बहुत है। यानी ज़ुल्करनैन ने कहा कि नहीं, मुझे किसी महसूल की ज़रूरत नहीं है, मेरे परवरदिगार ने जो इनायत मुझ पर कर रखी है वो मेरे लिए बहुत है। मा मक्कन्नी फी है रब्बी खैर, वही बहुत है, यानी अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम और बहुत एहसान है, तो मैं ये काम तुम्हारा कर दूंगा, इसके लिए मुझे किसी महसूल की या कोई खराज लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस पर लिखा है कि ये उस ज़माने के वहशी कबाइल थे और कदीम ज़माने से मुतबद्दन इलाके पर गारतगराना हमले करते रहते थे। यानी इसके अलावा भी ज़िक्र होता है ईरान पर इनकी ताकत। ईरान का भी ज़ाहिर है वही इलाका है, ऊपर मिल जाता है। ईरान पर इनकी ताकत तुर्कस्तान के रास्ते से भी होती थी और कफकाज पहाड़ों के उस दर्रे से भी जिसका ज़िक्र ऊपर हुआ है, यानी उधर से भी ये हमलावर होते थे, लेकिन वो इलाके दूसरे हैं और इधर नीचे की तरफ भी आते थे इसी दर्रे से गुजर कर जिसका यहाँ ज़िक्र हो रहा है। ज़ुल्करनैन ने जब ये कहा कि मेरे परवरदिगार ने जो कुछ मुझे दे रखा है, मेरे इख्तियार में दे रखा है, वही बहुत है, इसमें खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इस पर मैंने लिखा है कि असल में लफ्ज़ खैर इस्तेमाल हुआ है। इसमें दो बातों की तरफ इशारा है, एक ये कि ये काफ़ी है, यानी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर कोई महसूल आयद करना पसंद नहीं करूँगा, और दूसरे ये कि ये नहायत पाकीज़ा माल है, इसमें लूट मार और तादी की कोई आलाइश नहीं, यानी ये कोई मैंने कौमों को मार कर मغلوب करके या उनका माल लूट कर जमा नहीं किया, ये पाकीज़ा माल है। तो उन्होंने कहा यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। अलबत्ता आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैन काल उनफ़ुकू। तो उन्होंने कहा कि अजल बैनकुम व बैनहुम रदमा, आप हमारे दरमियान कोई रोक बना दें। इन्होंने ये कहा कि अच्छी बात है, तो ऐसा करो कि हाथ पांव से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देता हूँ, यानी ये जो दर्रा है इसमें मैं एक दीवार बना देता हूँ, इसमें जो अफरादी कुव्वत है वो तुम मुझे फराहम करो, यानी जो लोग मेरे हुनरमंदों के साथ मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी मदद तुम मेरी करो, मैं दीवार खड़ी कर देता हूँ। आगे फिर उन्होंने बताया कि मुझे क्या क्या और चीज़ें चाहिए होंगी जो फराहम कर दो। इस पर मैंने वजाहत की है, इस तरह की एक कदीम दीवार के आसार कोहे कफकाज के दर्रे दारियाल में मौजूद है, यानी अंदाज़ा लगाया गया है कि ये दीवार जिसको दर्रे दारियाल कहा जाता है वहाँ बनाई गई, ये कफकाज के इलाके में इसके आसार अब भी मौजूद है। स्याह अपने सफ़रनामों में इसका ज़िक्र करते हैं, ये दीवार 50 मील लंबी, 290 फीट ऊंची और 10 फुट चौड़ी थी, यानी एक बड़ी दीवार बनाई गई। 50 मील कोई मामूली फासला नहीं होता, उस पूरे इलाके को दीवार से बंद कर दिया गया। उस्ताद इमाम लिखते हैं, रिवायात में है कि अब्बासी खलीफा वासिक ने इस दीवार की तहकीकात पर 50 अफराद की एक टीम मुकरर की, यानी मुसलमानों ने जब कुरान में ये पढ़ा तो अब्बासी खलीफा वासिक के ज़माने में एक मुहिम भेजी गई कि इस इलाके को जाके देखा जाए, यानी ये बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है, ऊपर का पहाड़ी इलाका है, उसमें जाके देखा जाए। तो 50 अफराद की एक टीम मुकरर की गई। इस दीवार को लोग दारा या नौशीरवां की तरफ मंसूब करते हैं, यानी आम तौर पर ये इस तरह मंसूब की जाती है, लेकिन ज़्यादा शवाहिद इस बात के हक में हैं कि ये कैखुसरो ने तामीर कराई होगी, यानी इसी हुरेस ने, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जिसको उसकी दो बड़ी सल्तनतों की वजह से ज़ुल्करनैन कहा जाता था, जिसकी अलामत के तौर पर उसके ताज में दो सींग थे और उन्हीं को गोया उसका नाम बना दिया गया या लकब कहिए। मसलन ये बात पाया तहकीक को पहुंच चुकी है कि कै खुसरो की सल्तनत की शिमाली हद कोहे कफकाज तक थी, यानी ये बात भी मालूम है कि इसी की सल्तनत है जो कोहे कफकाज तक चली गई थी ऊपर शुमाल में। इतना वसी इलाका ज़ेरे नगीं कर लेना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब उसने इस इलाके को फतह करने के लिए कोई इकदाम किया हो। कुरिश नाम का एक शहर और एक दरिया कोहे कफकाज के इलाके में अब तक मौजूद है, ये मालूम होता है कि इसके नाम पर वहाँ नाम भी रखे गए। आहनी दीवार को गोरा का नाम दिया जाता है, जो कुरिशी की बिगड़ी हुई शक्ल मालूम होती है, यानी उसी लफ्ज़ को बाद के लोगों ने इस तरह बोलना शुरू कर दिया। ये दीवार धात से दो पहाड़ियों के दरमियान बनी हुई है और इसके निचले हिस्से में, उस वक्त ये दीवार कुछ मौजूद थी, और इसके निचले हिस्से में बरसात के पानी के निकलने के लिए जगह छोड़ दी गई, यानी इस तरह बनाई गई है कि पानी भी निकलता रहे और उधर से हमलावर भी रोक दिए जाएं। इस तरह की जो दीवारें अभी मौजूद हैं उस पे ये मालूम है कि एक दीवार हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मौजूद है और दीवारें चीन से तो एक दुनिया वाकिफ है। बनाई जाती थी इस तरह की दीवारें उस वक्त लोगों के लिए कबाइली हमलों से या और इस तरह के ताक करने वाले लोगों से बचने के यही तरीके थे। मौजूदा ज़माने में तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई और एक नई दुनिया वजूद में आ गई। तो उसने कहा कि आतूनी ज़ुबर अल हदीद, मुझे लोहे की सिलें ला दो। यानी पहले तो उसने ये कहा था कि मुझे तुम मज़दूर फराहम करोगे, हाथ पांव से मेरी मदद करोगे, और अब लोहे की सिलें भी फराहम करनी है मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। चुनाचे वो फराहम कर दी गई। और फिर क्या हुआ कि हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन ने काल उन फुकू, यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को पाट दिया, यानी दीवार खड़ी हो गई, उसमें लोहे की इस तरह की सिलें और चादरें इस्तेमाल की गई। इसमें मैंने लिखा है कि असल में सावा बैन सदफ़ैन के अल्फाज आए हैं, सदफ़ खौल और खला को कहते हैं। यहाँ इसके मुसन्ना इस्तेमाल करने में इसके दोनों तरफ़ों का लिहाज है। अरबी ज़ुबान में जैसे हमारे यहाँ उर्दू में, अंग्रेज़ी में, फ़ारसी में वाहिद जमा होते हैं, एक दो के लिए अलग होता है, उसको मुसन्ना या तस्निया कहते हैं। तो कुरान ने यहाँ मुसन्ना इस्तेमाल किया सदफ़ैन, ये मालूम होता है कि जो उसकी वसअत थी उसको बयान करना मकसूद है। दोनों अतराफ बहुत दूर तक थे, तो वो पहाड़ों के दरमियान उस खला को पाट दिया और उसके बाद कहा कि धोको, हत्ता कि जब उसको आग कर दिया तो हुक्म दिया कि लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उढ़ेल दूँ। यानी इस तरह वो दीवार बनाई गई, वो फराहम कर दी गई, यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को पाट दिया यानी सावा बैन सदफैन, फिर उसने कहा कि अब आग जलाई जाए और उसको थोंका जाए, कालन फखू, और इस तरह जलाई जाए कि गोया ये पूरी की पूरी दीवार आग बन जाए, जैसे कि आम तौर पर लोहे के साथ किया जाता है। और फिर कहा कि अब आओ, अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं ताकि किसी के लिए नकब लगाने का कोई इम्कान ही बाकी न रहे। लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं, काला आतूनी उफ़रिग़ अलैहि कितरा। यानी गोया एहतमाम ये है कि लोहे से उसको खड़ा किया गया, लोहे को पिघलाया गया, फिर उसके बाद जब वो इस जालहु नारा, वो बिल्कुल पिघल कर आग बन गया, तो उसको मज़ीद पुख्ता करने के लिए उस पर तांबा भी उंडेल दिया गया। काला आतूनी उफ़रिग़ अलैहि कितरा मस्ताऊ यजहरू हो व मस्तताऊ लहू नकबा। तो ऐसी दीवार बन गई कि याजूज व माजूज अब न उस पर चढ़ सकते थे न उसमें नकब लगा सकते थे। ऐसी पुख्ता दीवार, ऐसी गैर मामूली दीवार बन गई। तो ये ऐसी दीवार बन गई कि याजूज व माजूज अब न उस पर चढ़ सकते थे न उसमें नकब लगा सकते थे। ये वहाँ दीवार इसने दो दर्रों के दरमियान दर्रा दारियाल में बना दी। और जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया है कि खलीफा वासिक के ज़माने में बाकायदा मुहिम भेजी गई, उसने जो आकर बताया वो काफ़ी तफसीलात हैं, जिस तरह उन्होंने देखा कि पानी के गुजरने के लिए नीचे जगह भी बनी हुई हैं और दीवार की वसअतें भी ये हैं, ये सारी बातें उन्होंने आके बताई, वो तारीख़ में नकल हो गई हैं। ये दीवार इस तरह बना के अब गोया एहतमाम हो गया कि याजूज व माजूज अब यहाँ चढ़ नहीं सकेंगे ना उसमें नकब लगा सके। इतनी पुख्ता है कि अगर वो नकब लगा के आना चाहें तो ये भी मुमकिन नहीं है, और अगर ऊपर चढ़ना चाहें तो इतनी बुलंद है कि ये कोई अब आसान काम नहीं रहा हूँ। काला हाजा रहमतुम मिन रब्बी, जुलकरनैन ने कहा ये मेरे परवरदिगार की रहमत है। यानी जब वो منصوبہ مکمل ہو گیا، دیوار بن گئی، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ اس فقیر نے کام تو کر دیا لیکن یہ میرے ہی پروردگار کی رحمت، اس کا کرم اور اس کی عنایت ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یعنی جب میرے پروردگار کے وعدے کا ظہور ہوگا، یہ دیوار میں نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اگر میرے پروردگار نے اس کے لیے کوئی اجل مقرر کی ہے تو وہ جب اجل آ جائے گی تو اس کے بعد وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا۔ یہ گویا اپنے عجز کا اعتراف ہے اور ان کو بھی اس بات کی تلقین و نصیحت ہے کہ انسان کی حد تک جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، لیکن اب یہ میرے پروردگاری کا معاملہ ہے، وہ کب تک اس کو قائم رکھتا ہے، جب اس کے وعدے کا وقت آ جائے گا اور اس کا ظہور ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس زمین ہی کو ہلا ماریں گے اور اس کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کریں گے تو پھر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب تم محفوظ ہو اور اس علاقے میں رہ سکتے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ قرآن نے، یعنی اب وہ واقعہ مکمل ہو گیا، یہ قرآن نے نہایت خوبی کے ساتھ قصہ ذوالقرنین کو سورہ کے مضمون سے متعلق کر دیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قصہ قرآن مجید نے اپنی طرف سے نہیں سنایا، یہود نے جو سوالات کیے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، چنانچہ شروع ہی اس طرح ہوا ہے کہ یسألونک عن ذوالقرنین، یہ اب آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید سوالات کے جواب اسی وقت دیتا ہے جب اس جواب کے ذریعے سے اس کے انذار کے مضمون کا کوئی پہلو نمایاں ہوتا ہو۔ تو یہاں پھر اس نے وہ واقعہ سنایا ہے، اس کو یاجوج ماجوج کے ساتھ متعلق کر کے دکھایا ہے کہ اصل میں کس لیے انتخاب کیا گیا اس واقعے کا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ وہ جواب دے، اب اس کو آخر میں واضح کیا ہے۔ یہ قرآن نے نہایت خوبی کے ساتھ قصہ ذوالقرنین کو سورہ کے مضمون سے متعلق کر دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے تنگ ظرفوں کی طرح یہ نہیں کہا، اس نے ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں وہ کارنامہ کیے جا رہا ہوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ اسے اپنے پروردگار کی رحمت و عنایت اور اس کے فضل و کرم کا کرشمہ قرار دیے۔ ساری بحثی سورہ میں یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی نعمتیں پا کر کس تم تراق کے ساتھ اسی پروردگار کا انکار کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو جس نے یہ سب دی ہیں، اسی پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں پیچھے دو شخصوں کی تمثیل کے ذہن میں، اس سے پہلے دو شخصوں کی تمثیل بیان ہوئی ہے، پیچھے دو شخصوں کی تمثیل کے ذیل میں مغروری نے دنیا کی یہ ذہنیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ اپنی کامیابی کے ہرے بھرے باغ میں داخل ہوتے ہیں تو غرور کے نشے میں کہتے ہیں کہ ما ظن ان تبیدہ حاضی ابدا، وہاں جہاں سے قصہ شروع ہوا ہے، وہاں جو دو لوگوں کی تمثیل ہے اس میں یہ جملہ نقل ہوا تھا کہ میں گمان بھی نہیں کرتا کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا، یعنی وہاں جب باغ کو دیکھا ہے، باغ ظاہر تمثیل ہے دنیا کی، دولت کی، اقتدار کی، جس وقت قومیں اس جگہ پہنچتی ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ جملہ وہاں تھا۔ اب اس کے بعد ذوالقرنین جیسے بڑے بادشاہ کا قصہ بیان کیا، اس کے شان و شوکت کو بیان کیا، اس کے وسائل کو بیان کیا، اور جب اس نے ایسی غیر معمولی دیوار بنا دی، یعنی 50 میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی دیوار، تو اس کے بعد کیا کہا؟ یہ کہ میرے پروردگار کا کرم، اس کی عنایت، اس کی رحمت ہے، جب تک وہ چاہے گا قائم رہے گی، جب اس کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک عبد شاکر، یعنی اللہ کے شکر گزار بندے کی ذہنیت نمایاں فرمائی ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ کے شدنی وعدہ آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ تو اس طرح گویا قرآن نے قصے کو آخر میں لے جا کے یہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، ان کا معاملہ پھر قیامت کے انذار سے کیسے متعلق ہوتا ہے، اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔